अगला रुकू नंबर 6, 34 से 42 है, इस्लाम के मुआशरती और आयली कवानीन। यहाँ मैं आपको एक आसान सा जुमला बता दूँ, पूरे अब तक के मौजू में से बीइंग अ वाइफ मेरी क्या जिम्मेदारी है, और अगर कोई मर्द है तो बीइंग अ हस्बैंड उसकी क्या जिम्मेदारी है। दूसरी बात, अगर हम अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो बच्चों के माँ बाप होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है। इस बात को सामने रखते हुए सुनिएगा और जहन में रखिएगा ये बात कि इस कुरान में अल्लाह ताला ने हर मौजू को टच किया है। औरत और मर्दों की जिम्मेदारियाँ, अर रिजालु कवामून अल निसा, मर्द औरतों पर कवाम है। कवाम कहते हैं मैनेजमेंट करने वाला, केयर टेकर है, उसका ख्याल करेगा, उसको घर को देखेगा, संभालेगा। इसी तरह से क्यों किया, अब उसकी दो वजूहात हैं। मर्द औरतों पर कवाम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। बस वो औरतें जो नेक बख्त हैं और खावंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत की निगहदाश्त रखने वालियां हैं, और जिन औरतों की नाफरमानी और बददिमागी का तुम्हें खौफ हो, इन्हें नसीहत करो और इन्हें बिस्तरों पर अलग छोड़ दो और इन्हें मार की सजा दो। फिर अगर वो ताबेदारी करें तो इन पर कोई रास्ता तलाश ना करो, बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी वाला और बड़ी बड़ाई वाला है। अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो तो एक मुनसिफ यानी एक इंसाफ करने वाला शख्स मर्द वालों में से और एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों में मिलाप करा देगा। यकीनन अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और पूरी खबर वाला है। और अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ सलूक और एहसान करो, और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और कराबतदार हमसायों से और अजनबी हमसाये से और पहलू के साथी से और रख के मुसाफिर से और इनसे जिनके मालिक तुम्हारे हाथ हैं, गुलाम और कनीस मुराद हैं। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले और शेखी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। जो लोग खुद भी बखीली करते हैं और दूसरों को भी बखीली करने को कहते हैं, और अल्लाह ताला ने अपना जो फजल इनको दे रखा है इसको छुपा लेते हैं। हमने इन काफिरों के लिए जिल्लत की मार तैयार कर रखी है। और वो लोग जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिसका साथी यानी हम नशीन शैतान को, तो वो तो बदतरीन साथी है। भला इनका क्या नुकसान था अगर ये अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाते और अल्लाह ताला ने जो इन्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते। अल्लाह ताला इन्हें खूब जानने वाला है, बेशक अल्लाह ताला एक जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो तो इसे दो गुनी कर देता है और खास अपने पास से बड़ा सवाब देता है। बस क्या होगा, जरा से इस आयत को महसूस करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सूरह निसा सुनी और इस आयत पे आकर रोना शुरू कर दिया, और रोते ही रहे, रोते ही रहे। क्यों, आइए देखिए। बस क्या हाल होगा जिस वक्त के हर उम्मत में से गवाह हम लाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बना कर लाएंगे। जिस रोज़ काफिर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाफरमान लोग आरजू करेंगे कि काश इन्हें ज़मीन के साथ हमवार कर दिया जाता, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा न सकेंगे। कितना कुछ इस रुकू में आपने पढ़ लिया, कैसे अल्लाह ने टूटते हुए घर को बचाने की कोशिश की। इस हिस्से में हमने सबसे पहले शौहर बीवी के बिगाड़ की बात की, तो मैं इसको एक टॉपिक देती हूँ, घर टूटने ना पाए। याद रखिए कि शौहर और बीवी का ताल्लुक जो है ना, ये कोई दो बेजान चीज़ें नहीं है कि लाकर आपने एक गुलदान रख दिया और उसके साथ आपने एक छोटा सा शोपीस रख दिया। दो जिंदा, दो इमोशनल, जीते जागते इंसानों को एक जगह करना ये कोई आसान बात नहीं है। मिजाज फ़र्क होते हैं, हालात फ़र्क होते हैं। एक पौधा भी कभी आप किसी एक के आंगन से उतार कर लाकर दूसरे घर में लगाएं तो वो थोड़ा सा कुमला जाता है। तो शादी के शुरू के दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लड़की ने शौहर को भी समझना है, शौहर ने बीवी को समझना है, फिर ससुराल भी है, महका भी है, फिर दो डिफरेंट बिल्कुल ब्रॉट अप होती हैं चीज़ें। तो लिहाजा ऐसे वक्त में ये बातें जो भी हमने हिंट सुने हैं, अब इसकी डिटेल सुनिए। आज कम से कम आप ये कर सकते हैं कि सूरह निसा ही की खाली तफसीर सुनने की नीयत करें, जब मर्जी सुने। मैं ये नहीं कह रही अभी सुनना शुरू कर दें, अभी दौरे कुरान पे फोकस करें, लेकिन आप इन चीज़ों को लेकर सुनिए कि कुरान क्या क्या बताता है। अभी हमने सुना है कि बिगड़ी हुई बीवी को कैसे ठीक करो, और उसके बीच में एक लफ्ज़ पे सारी दुनिया को इतराज़ है, जी मारो इनको, मारो कैसे मारो। आप देखिए, एक छुरी किसाई के हाथ में होती है और एक छुरी चोर के हाथ में होती है, और वही क्या लिए नश्तर या औजार डॉक्टर के हाथ में भी होता है। क्या वो तीनों का एक ही स्टेटस है माशरे में? बिल्कुल भी नहीं। औरत को सीधा करने के लिए पहले प्यार की बात, फिर नसीहत की बात, फिर घर के अंदर रहते हुए थोड़ी सी उससे बात करो, फिर भी नहीं बात समझ आ रही, उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है। और ये हर औरत के लिए नहीं है, हमारी देसी खवातीन में तो ऐसी कमी होंगी, बच्चियां और बड़े सभी। देसी औरत, मैं एक मोहब्बत से कह रही हूँ, एक्सेप्शनल तो हर जगह ही होती हैं, देसी औरत के तो मिजाज में निभाव है। उसको तो कह के भेजते हैं कि इस घर से अब तेरा जनाजा ही जाएगा। जैसी भी बच्चियां हमारी लाउबाली हों, माँ बाप के घर में पानी भी ना पियाओ, शादी के वक्त उसको भी ये मैसेज होता है और वो खुद भी बेचारी कोशिश करती हैं, लेकिन आइडियल हालात नहीं है ना, मर्द कवाम है। तो फिर नतीजे में औरत सालेह और कानिता कैसे हुई? सारी कमाई की जिम्मेदारी अल्लाह ने मर्द पे डाली थी। यहाँ तो आप कह रहे हैं जी कि नहीं, टू इनकम फैमिली चलेगी। आचा बेगम आप किधर पैसे डालेंगी, और वो कहती हैं कि अच्छा आप ये ले आइए तो मैं वो ले आऊँ। इस्लाम ने तो औरत को शहजादी और रानी बनाया है, मलका है वो। मियाँ तो पीछे उसके लेके ट्रॉली फिर रहा होता है और वो चीज़ें खरीद रही होती है, वो शॉपिंग करके चली जाती है, वो बेचारा बिल देकर जाकर गाड़ी में रखता है, गाड़ी से निकालता तक वो है, हो सकता है लगा भी दे, बस वो खड़ी होकर चूल्हे के पास अगर एक खाना ही बना दे मोहब्बत से प्यार से, मियाँ सब उसी पे पीछे जाते हैं। क्या मलका एलिजबेथ और क्या फुला फुला मदर टेरेसा, और कौन सी औरत जिसका आपने नाम मोहब्बत से सुना हो उसकी इज्जत होगी जो एक मुसलमान औरत की है? इसके बरक्स आज इक्वालिटी के नाम पे औरत को बेचारी को पीस दिया, नहीं नहीं ये तो नहीं वो नहीं। तो लिहाजा इस मौजू को सुनिए, इस वक्त हम बात करेंगे ईमान पे, ईमान से मुतल्लिक इस रुकू में दो आयते हैं 38, जिसका खुलासा क्या है कि रियाकारी यानी शो ऑफ शैतानी अमल है। आज कितना शो ऑफ है हमारे पास, हर चीज़ में, पहनने ओढ़ने खिलाने पिलाने, सबसे पहले तस्वीर खींच के मीडिया पे डालते हैं, पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा है भाई खाओ, नहीं 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 अभी तस्वीर खींचनी है भाई, खाना लगा हुआ है, पहले लोग खाना लगा के मेहमानों को कहते थे आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, अभी कहते ठहर जाए अभी ज़रा इसकी फ़ोटो खींच लें, ये शैतानी काम है। दूसरा बंदा जो आपकी तस्वीर देख रहा हो सकता है उस वक्त उसके पास कुछ भी ना हो सकता है उस घर में लड़ाई पड़ जाए कि उधर तो ये हो रहा है तो हमें क्यों नहीं कुछ मिल रहा। आज इस डिस्प्ले कल्चर ने लोगों को सुसाइड तक पे डाल दिया, वो नीली पीली आंखें बदल कर गुड़िया बन के अपनी तस्वीरें प्रोफाइल्स पे लड़कियां लगाती हैं, बेचारी सीधी सादी लड़कियां रोती हैं, कहती हैं मैं खुदकुशी कर रही हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, मर के चैन पा लेंगे आप? इतना तोशा आखरत का आपके पास जमा हो चुका है कि आप उसको दिखाकर आखरत के इम्तहानों से गुजर जाए? मर के बिना चैन पाया तो किधर जाएंगे? फिर इसी तरह सूरत निसा की आयत 39, व माजा अलैहिम, इसका मौजू क्या है? अल्लाह के रास्ते का खर्च आखरत का सेविंग अकाउंट है। अब देखिए दो अकाउंट्स होते हैं ना, एक करंट अफेयर्स होते हैं, एक सेविंग्स होती हैं। करंट में डे टू डे चलता है और सेविंग्स आगे है। अगर आप और मैं आज अल्लाह के रास्ते में कुछ भी खर्च करेंगे तो वो हमारा उधर से जाकर मिलेगा, और वहाँ जाकर जितना मिलेगा वो लिमिटेड नहीं है, वो अलाखिरा अनलिमिटेड अकाउंट में ढल चुका होगा। क्या पता चला इस सारे मैसेज में से, मर्द के लिए कवामियत और औरत के लिए इतात, ये अल्लाह की बांट है। देखिए मैं मिसाल बच्चियों को दे रही हूँ, माओं को तो पता है ये टेबल है ना थोड़ा सा ऊंचा है, और जिस चेयर पे मैं भी बैठी हूँ और आप अपनी देख लीजिए, ये इस टेबल से छोटी थोड़ी नीचे है ना, टेबल स्टर्डी है, सख्त है, खड़ा है, मोटा है, कुर्सी बेंडेड है, फोमी है, सॉफ्ट है, ये टेबल मर्द है और चेयर औरत है, दैट्स द स्टोरी। औरत में लोच, औरत में फ्लैक्सिबिलिटी, सालिहियत, कानितियत, औरत हमेशा मल्टी ट्रैक काम कर लेती है, मल्टी टास्किंग होती है, औरत के मिजाज में नभाव भी है, सब है, मर्द को स्ट्रांग होना चाहिए। अब इस कुर्सी को कहें कि नहीं ये रोए हाय मुझे नीचे कर दिए तो ऊपर करिए, तो क्या लगेंगे आप? मैं कुर्सी को इतना ऊपर करके बैठूं तो मैं कैसी लगूंगी, और क्या फिर मैं इस टेबल पर रखी चीज़ों से फ़ायदा उठा लूंगी? तो ये अल्लाह की दी हुई बांट है, इसमें क्यों आप झगड़ते हैं? आंखें छोटी छोटी होती हैं, बाल लंबे लंबे होते हैं, कान दो हैं, नाक एक है, अल्लाह की बांट है। तो अल्लाह को पता था कि दुनिया में निभाव के लिए क्या ज़रूरी है। फिर इसी तरह नुमाइश के मौाक़े में खर्च करने पर फयाजी, और खामोश दीनी मौाक़े पर खर्च करने में बखीली, ये है शैतान का धोखा। ये है वो चीज़ें जिसने आज हमारे लिए इन चीज़ों को मुश्किल कर दिया, समझना। फिर इसी तरह नफ्स के तकाजों पे खर्च करने में फैयास लोग, उनको कुरान ने यहाँ शैतान के साथी कहा। अपनी ज़ात पे आप कितना लगा सकते हैं, ये एक सवाल है। क्या अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? शादियों में अच्छे कपड़े, खाने, सब कुछ कर सकते हैं, मगर कब, कहाँ, किसके लिए? अपने लिए, तहदीस नेमत के लिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए। इसके बरक्स हम क्या करते हैं? दिखाने के लिए, जलाने के लिए, कुड़हाने के लिए, हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए। इस्लाम आपको किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ जो हदों में रहे उससे नहीं रोकता। बेहतरीन तरीके से अगर आप चलें तो आप अच्छे कपड़े पहने, अल्लाह आपको अजर देता है। रिवायात से पता चलता है कि एक औरत जितनी देर अपने आप को सिंगार में लगाती है कि मेरा शौहर मुझे देखे, मुझे खुश होगा, वो वक्त उसका इबादत है। तो आपका मेकअप भी इबादत है, आपका अपने कपड़ों को इस्त्री करना भी इबादत है। कौन रोकता है आपको? ये किसने आपको कह दिया कि इस्लाम बहुत ही गरीब दीन है? सर उठा के जिए, खाएं, पिएं, खुश हो। और एक मोमिना को जितना खुश होने का हक है उतना गैर मोमिना को नहीं। एक वो चीज़ है जो खास है, एक्सक्लूसिवली फॉर यू, और एक है कि सभी खा लें, सभी देखें उसको, सबके लिए ये चीज़ कौन सी अच्छी लगती है? किसी जगह दो कुर्सियों पे लिखा हो रिजर्व्ड, आप जहाज में जाते हैं सिर्फ फ्रंट रो वाले वो हैं जी जो बिजनेस क्लास के हैं, आपको कौन सी अच्छी लगती है? वो सब जो मीडियोकर्स बैठे हैं, वो लोग जो बीच में बैठे हैं? नहीं भाई, हमें तो वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। इस्लाम आपको सिर्फ वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। तो आपका मेरा काम क्या है कि शरीयत में गैर मामूली हालात में गैर मामूली जो रुख्सतें मिलती हैं, आगे हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे फ़ायदा उठाइए, गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट। और अभी आगे नमाज की कुछ बातें होंगी, तो नमाज में जिस्म के साथ नफ्स को झुकाना है। अगर हमारी नमाजें ठीक हो जाए ना, हमारी शादियां भी ठीक हो जाएंगी, हमारे काम दुनिया के सारे ठीक हो जाएंगे। फिर हमने क्या सीखा कि माल को अल्लाह की राह में इसकी रजा के लिए खर्च करना है, ज़ौजैन के दरमियान इस्लाह के लिए ख़ानदान को किरदार अदा करना है, यानी माँ बाप और बच्चों के बीच में जो रिलेशंस है ना उसके अंदर हमें थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। आगे देखिए रुकू नंबर 7 है, 43 से 50, ईमान का तकाजा समेना वाताना, हमने सुना और हम मानेंगे, कह रहे हैं आपके दिल इंशाल्लाह ताला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आपका प्यारा रब आपको पुकार रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात वअन्तुम सुकारा। याद रखिए कि शराब की हुरमत, प्रोहिबिटेशन ऑफ दिस लिकर और शराब, उसके सिलसिले की ये कायद है। 3 स्टेप्स में शराब हराम हुई थी, उसमें से ये सेकंड स्टेप है। ऐ ईमान वालो, जब तुम नशे में मस्त हो तो नमाज के करीब भी ना जाओ, जब तक कि अपनी बात को समझने ना लगो, और जुनाबत की हालत में जब तक कि गुसल ना कर लो। हाँ, अगर राह चलते हुए गुजर जाने वाले हो तो और बात है, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो और तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मट्टी का इरादा करो और अपने मुंह और अपने हाथ मल लो, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है? वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है, और अल्लाह ताला का दोस्त होना काफ़ी है, और अल्लाह ताला का मददगार होना काफ़ी है। बस यहूद कलेमात को इनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और नाफरमानी की, और सुन इसके बगैर के तू सुना जाए। नबी सल्लम को बददुआ दे रहे थे वो लोग, कुरान ने उसको पेश कर दिया, और हमारी रियायत कर, लेकिन इस कहने में अपनी ज़ुबान को पेच देते थे, यानी ट्विस्ट द टंग करते थे, और दीन में ताना देते हैं। और अगर ये लोग कहते कि हमने सुना और हमने फरमाबरदारी की और आप सुनिए और हमें देखिए, तो ये इनके लिए बहुत बेहतर और नहायत ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके कुफर की वजह से इन्हें अपनी रहमत से दूर किया, यानी लानत की। बस ये बहुत ही कम ईमान लाते हैं। ए अहले किताब, जो कुछ हमने नाजिल फरमाया, जो इसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इस पर ईमान लाओ इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और इन्हें उल्टा कर पीठ की तरफ कर दें, या इन पर लानत भेजें जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की, और अल्लाह का काम तो किया हुआ है। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शिर्क किए जाने को नहीं बख्शता। कब तक? अगर इस पे बंदा मर जाए। जिंदगी में तो शिर्क भी माफ है अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकरर करे, इसने बहुत बड़ा गुनाह और बख्तान बांधा। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी नफ्स और सताइश यानी तारीफें खुद करते हैं, यानी अपने मुंह खुद मियाँ मिठू? बल्कि अल्लाह ताला जिसे चाहे पाक करता है, किसी पर एक धागे के बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। देखो ये लोग अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं, और ये हरकत सरीख गुनाह होने के लिए काफ़ी है। यहाँ से आप देखेंगे कि मुनाफिकीन की भी कुछ बातें हैं। जहाँ भी ऐसे मसाइल आएंगे, जैसे कि आज आ रहे हैं लाइफस्टाइल में इस्लाम को लाने के, औरतों के हिजाब और पर्दे के और शादी ब्याह की बातें, वहाँ ज़रूर मुनाफिकीन की बात होगी। यहाँ भी आप यही देख रहे हैं, सूरह नूर में भी देखेंगे और सूरह अल-अहज़ाब में भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि मुनाफिक होता ही वो है कि जिसको अल्लाह का बताया हुआ तरीका पसंद नहीं। तो लिखिए शरीयत वर्सेस शहावत। नमाजें पढ़नी किसी को मुश्किल नहीं लगती हैं, हाथ जुमरा भी कराते हैं लोग, लेकिन लाइफ स्टाइल, हाउ यू लिव योर लाइफ, ये मुश्किल है। काबे में जाके चक्कर पे चक्कर, इन्ना सलाती व नुसुकी व माहयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक तवाफ, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, वहां से वापस आकर क्या हो जाता है? नमाज में किबला ढूंढते हो, शादी में किबला किसका ढूंढेंगे हम? अपने लाइफस्टाइल में हमारे किबले, किबला मीन जिसको आप फॉलो करते हैं, किसको हम फॉलो कर रहे हैं? तो इसके लिए जरूरत है ईमान को देखने की। इस रुकू में 3 आयात ईमान से मुतल्लिक हैं, निसा 43। इसका मौजू क्या है कि ना समझी की नमाज नमाज नहीं है। ये आयत आपको मुझे बताती है कि नमाज का वो हिस्सा कबूल है जिसमें बंदे का दिल हो, मा हजरा फी ही कलबुक। अब आपको मुझे ये नशे की आदत तो छोड़ दें, अल्लाह का शुक्र है नशा तो नहीं को करता होगा, लेकिन पिछली जो नमाज पढ़कर बैठे हैं समझ आई थी? अत्तहियात लिल्लाह ही का मतलब समझ आता है? वो सूरतें जो पढ़ते हैं क्या हम उसको समझ भी रहे होते हैं? इल्ला माशाल्लाह। फिर इसी तरह सूरत निसा 46 का टॉपिक क्या है कि दीन को ख्वाहिश के ताबे रखने वाले अल्लाह की रहमत से दूर रहते हैं। आज ये प्रॉब्लम है, सबको सब पता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जानता हूँ सवाबे जोहद लेकिन तबीयत उधर नहीं जाती। सब पता है हमें, फिर कहते हैं नमाज को दिल नहीं करता। हाँ मुझे पता है ये अच्छी बात नहीं, पर मैं क्या करूँ, ये नहीं सुनना चाहिए फिर भी सुनती हूँ, ये नहीं देखना चाहिए फिर भी देखती हूँ। कभी आपको अपने ऊपर ऐसा कोई एहसास हो ना कि मेरे ऊपर मेरा नफ्स बहुत गालिब आ गया है, तो आप उसके लिए दुआ मांगा करें, उर्दू में फिलहाल मांग लें कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के शर से बचा। क्योंकि नफ्स के जो शहर है ना, ये बंदे को जीने नहीं देते, और बंदा अपनी ज़िंदगी में मजबूर हो जाता है, उसको ऐसे लगता है कि मैं वाकई अपने आप को परेशान कर लूँगी अगर मुझे इस पे मज़ीद रोका टोका गया। तो लिहाजा अपने नफ्स पे काबू पाने की दुआएं पढ़नी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। फिर इसी तरह सूरत निसा 47, क़यामत के दिन सारे फैसले अदल के साथ किए जाएंगे और हमारा इस पर ईमान है। अब इन आयात में आपने बार बार एक लफ्ज़ देखा था और वो लानत का था, तो हमारे उर्दू के लफ्ज़ लानत पे मत जाइएगा। अरबी का लफ्ज़ लानत जो है उससे मुराद क्या होता है? रहमत से दूरी, यानी जिसके ऊपर लानत होती है ना वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है। और इसी तरह से आप ये भी चीज़ ध्यान में रख लें कि लानत जो होती है ना, ये बेहिसी की आखिरी सूरत है। ऐसे बंदे के अंदर से अच्छी बुरी बात का फ़र्क ही मिट जाता है, जिसको आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना कि तमीज़ ही मिट गई। अल्लाह ना करे कि हम में से किसी के ऊपर ऐसा कोई वक्त आ जाए कि हमारे अंदर से खैर के काम करने की जो सलाहियत है वही ख़त्म हो जाए। और ये अल्लाह ताला का एक इंतकाम होता है उन लोगों के ऊपर के जो इस बात की केयर नहीं करते कि हमारा रब हमें किस चीज़ के लिए दुनिया में भेजता है और हम इस दुनिया में रहकर क्या करने वाले हैं। फिर इसी तरह से बेहिसी जब आखिरी सूरत में पहुंचती है तो मसख की सूरत इख्तियार करती है। आगे हम आयात पढ़ने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों की सूरतें मसख कर दी थी, शक्लें बदल दी थी। अल्लाह ना करे एक ऐसा वक्त किसी पे भी आए। और इसी तरह से एक पैगाम जो हमें इन आयात में मिल रहा है, गिरोही निजात का अकीदा सरासर बातिल है। कहते जो मर्जी कुछ कर लो, बस जो हमारा गिरोह है वो हमें बचा लेगा, दूसरे लोग हमारे साथ बचेंगे और अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। आप आज के दौर में नहीं, हर दौर में ही होता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही है। कहते हैं जैसा चाहो जियो, तुम्हारी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई आपका जिस्म आपको किसने दिया? अल्लाह ने दिया, तो क्या फिर आप अल्लाह की मर्जी के ताबे हैं कि अपनी? अगर आपकी जो मर्जी है, लेट्स सी हम अपनी बॉडी के ऊपर गौर करें, अगर मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी है तो मैं मोटी क्यों हूँ? किसी का नहीं दिल करता मोटे होने को। मैं गोरी चिट्टी हो जाऊँ, हर एक का दिल चाहता है वो गोरा चिट्टा हो। मेरे ऊपर बुढ़ापे के आसार ना आए, मेरे बाल काले रहें, मेरे बाल सफ़ेद ना हो। अगर हमारी मर्जी पे हमारा जिस्म चलता हो तो मौजे ही मौजे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं। मर्द रोज़ शेव करके बाल काट रहे हैं दाढ़ी के, मर्जी होती तो बाल रोक लेते। तो बात यह है कि अल्लाह की मर्जी है, लेकिन ख्वाहिश परस्त दिल रब की इताअत से दूर रहता है, दिल नहीं कर रहा होता। तो लिहाजा दीन को ख्वाहिश के नहीं, ख्वाहिश को दीन के ताबे रखना है। और फेथ इन एक्शन के पॉइंट, दीनी हुक्मों की तावीलें नहीं करनी। सीधा सीधा मान लीजिए, आज बहुत बात को ट्विस्ट करके, इधर नहीं इसका ये मतलब है, आज के दौर में ये जायज़ है, नहीं, इसको तो इंटरेस्ट नहीं कहते, ये तो वो नहीं, ये तो यूजरी है, तो अल्लाह से एक दुआ करें कि अल्लाह मेरी ज़ुबान को सीधा कर दे और मेरे अमल को बेहतरीन कर दे। आज अपना बातिन ठीक करके कल अपना ज़ाहिर खूबसूरत बनाना है। आपको पता है कि जन्नती औरत कितनी हसीन होगी, क्रिस्टल डॉल, शरबत पिएगी सुर्ख रंग का, तो वो जिस्म में जहाँ से गुजरेगा ना, वो चमकता हुआ दिखेगा जिस्म में से। आप अगर सिर्फ जन्नत की औरत या जन्नत की जो लड़की होगी उसकी खूबियाँ जान लेना, तो आपका दिल करेगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से वहाँ ले जा। आज यहाँ दुनिया में पूरी कोशिश के बावजूद भी कभी हम खुश नहीं हो पाते, लेकिन वहाँ अल्लाह अपनी रहमत से देगा। और इसी तरह हर किस्म के शिर्क से बचना है। आगे रुकू नंबर 8, 51-59, टॉपिक है शैतान के फॉलोअर्स यानी पैरोकार अल्लाह की रहमत से दूरी के हकदार हैं। अब यहाँ से आगे कुछ रुकू तक मुनाफिकीन, हिपोक्रिट, कॉल और फेल का फर्क, कहते कुछ करते कुछ, जुबान पे कुछ दिल पे कुछ। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मुसलमान हो कि जो बातें तो बड़ी प्यारी करे लेकिन काम उसके अच्छे ना हो। अल्लाह ताला एक सवाल के साथ बात को छेड़ते हैं कि आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला है, जो बुत का और बातिल माबूद का एतकाद रखते हैं और कुफार के हक में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज्यादा राह रास पर हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने लानत की, और जिसे अल्लाह लानत कर दे इसका कोई मददगार आप नहीं पाएंगे। क्या इनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर ऐसा हो तो फिर ये किसी को एक खजूर की गुठली के शिगाफ के बराबर भी कुछ ना देंगे, यानी कंजूस है। या ये लोगों से हसद करते हैं इस पर कि जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दिया है। बस हमने तो आले इब्राहिम को किताब और हिकमत भी दी है और बड़ी सल्तनत भी अता फरमाई, फिर इनमें से बाज ने इस किताब को माना और बाज इससे रुक गए, और जहन्नुम का जलाना काफी है। बड़ी दिल को हिलाने वाली आयात है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफर किया इन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जरा इमेजिनेशन में लाइए, जब इनकी खालें पक जाएंगी यानी जल के पक जाएंगी, हम इनके सिवा और खालें बदल देंगे यानी स्किन्स चेंज होंगी। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि खालों को बदलने का दिन एक दिन में 70 बार होगा। क्यों ऐसा करेंगे? ताकि वो अजाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। खाल तक जलने का असर होता है। आज मेडिकल साइंस ने ये बात प्रूव कर दी कि जलने वाले की खाल जब तक रहती है तब तक दर्द होता है, जब खाल जल जाती है हड्डियों पे बात आती है तो वो दर्द का एहसास खत्म होता है। जहन्नमियों की खालें बार बार बदलने से क्या मुराद है? कंटिन्यूस टॉर्मेंट, कंटिन्यूसली उनको अजाब दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको उससे बचाए। स्किन ही है ना, इसी रंग गोरी चमड़ी काली चमड़ी इसी के पीछे है। अब आगे अल्लाह ताला आप जैसे प्यारे लोगों की बात कर रहे हैं जो ईमान के मोहब्बत में रोज़ अल्लाह की किताब को सुनते हैं, फरमाया और जो लोग ईमान लाए और अच्छे आमाल किए, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलु सालिहाती, हम अन करीब इन्हें जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहाँ साफ सुथरी बीवियाँ होंगी और हम इन्हें घनी छाँव और पूरी राहत में ले जाएंगे। दुआ करिए अपने लिए। आज आपको पता है कि अपने ईमान की शाखों में जन्नत और जहन्नम पढ़नी है और अल्लाह की मोहब्बत को पढ़ना है। अभी दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत में ले जा। कभी आपने जन्नत के बारे में सोचा? घरों में बच्चों के साथ बैठा करें जन्नत की बातें, आओ हमारा जन्नत का घर कैसा होगा, जन्नत जन्नत, बंदा मोमिन के दिल में तो होती है। अल्लाह करे कि हम जन्नत वाले काम करने वाले बन जाए। इसीलिए अब आगे एक बड़े प्यारे हुक्म की बात है। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें इन्हें पहुंचा दो, और जब लोगों का फैसला करो तो अदल और इंसाफ से फैसला करो। यकीनन वो बेहतर चीज़ है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता भी है और देखता भी है। एक और पुकार आपके कानों पे पड़ती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, ऐ ईमान वालो फरमाबरदारी करो अल्लाह ताला की और फरमाबरदारी करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तुम में से इख्तियार वालों की। फिर अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ करो तो इसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और रसूल की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और एतबार के इंजाम से बहुत अच्छा है। ये खूबसूरत सी आयत है जिसके ऊपर इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें खड़ी होती हैं। अल्लाह रसूल की इताअत और उलुल अम्र की इताअत, इसमें दीन वाले भी आते हैं और इसमें हुक्मरान भी आते हैं। इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक हमने 5 आयतें पढ़ी। निसा 51, जिसे अल्लाह की मार्फत मिल जाए वो हर तागूत से बेनियाज हो जाता है। 55, आज इतात न करने वाले कल बुरे अंजाम से दो चार होंगे। 57 निसा, ये दुनिया रब चाही तो वो दुनिया मन चाही। आज अल्लाह की मान लें, कल अल्लाह आपकी मानेगा, जिंदगी का भी असूल है। और अभी शादी की बातें शुरू में हुई ना, तो यहाँ भी टिप ले लीजिए, शुरू का एक साल आप मान लें, सब मान लें, जायज हलाल, ये नहीं कह रही गलत, जो नहीं पसंद आ रही बात मान लीजिए, मान लीजिए, जी, कानिता सालेहा, उसके बाद सारी उम्र घर वाले आपकी मानेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर निसा 58, अहल लोगों को काम सौंपना इंसाफ का तकाजा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियों में एक बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि आपने गैर अहल लोगों को नहीं, अहल लोगों को काम दिया। आज भी अल्लाह करे कि हमारी दुनिया और हमारे मुल्कों के इंतजाम अहल लोगों के हाथों में आ जाए। फिर निसा 59, अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। अब हुआ क्या, मुसलमानों से पहले यहूद अहले किताब थे, आसमानी किताब उन तक पहुंची, अंबिया कराम आए, लेकिन उनका हाल क्या हुआ कि आसमानी किताब की हामिल किसी कौम पर जब जवाल आता है तो वो अमल की बजाय खुश फहमियों की सतह पर जीने लगते हैं। ये सच है, कोई आएगा तो बचा लेगा, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, इब्राहिम जन्नत के दरवाजे पे खड़े होंगे, हमें देखते ही फौरन वेलकम करेंगे, और इस तरह की खुशफहमियों में जो रहते हैं उसका एक लाजमी नतीजा होता है, और वो क्या कि अमल की किताब को अमलियात, नस्बतों और फर्जी अकीदों की किताब बना देते हैं। आज आप देखिए कि वज़ाइफ ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, आज उम्मत मुस्लिमा में भी कई हद तक ये हो चुका है मामला, कुरान पढ़ने वाले कम, कुरान पढ़ा जाए तो समझने वाले कम, कुरान को हिफ्ज़ करने वाले कम, लेकिन कुरान की फलाहत पढ़ो तो ये हो जाएगा, वो पढ़ो तो ये होगा। मैं यहाँ एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गलियों में जाते और कहते लोगों मेरे ऊपर एक आयत उतरी है, अगर तुम वो पढ़ लो बार 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 तो तुम्हारी बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे, और अगर लोगों मेरे पास एक ऐसा वजीफा है उसको कर लो तो तुम करोड़पति हो जाओगे, कोई लड़ता आपसे? हो सकता है आपके सामने लाकर पानी की बोतलें रख देते कि इस पर भी फूंक मार दें। सारा झगड़ा, सारी लड़ाई मक्का के 13 साल में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ी मक्का वालों ने, वो खानदान, रिवायात, पिछले तरीकों के मुख्तलिफ बात थी। वो कहते थे आप हमें कहाँ लेके जाते हैं, अल्लाह के नबी ने जिम्मेदारियों को असल दर्जे पे निभाया जो अल्लाह ने उनको दी, और इसमें हमने ये आयत भी पढ़ ली कि जिम्मेदारियाँ अमानत होती हैं, अहल लोगों को जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए, और फिर आपके लिए खुशखबरी, ईमान और अमल सालेह का समर, हमेशा की जन्नत, और अहले जन्नत के लिए घने सायों की रहमत और इनायत होगी। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नतें अता फरमाएगा और उसके अंदर बहुत सारे साए होंगे। अमल के नुक्ते, फेथ इन एक्शन, दूसरों पर अल्लाह का फजल देखकर हसद नहीं करना। हसद क्या है? अल्लाह की बांट पे नाराज़ होना, अल्लाह ने ये चीज़ उसको क्यों दी, मुझे दी, आप भी मांग लीजिए, वो दे सकता है आपको भी। कभी किसी की कोई अच्छी चीज़ देखे ना, कोई कपड़ा ही देख लें, आपकी उम्र में अक्सर लोगों को कपड़े लत्ते ही अच्छे लगते हैं, जूते, जेवर, अल्लाह उसको दी मुझे भी दे दे। किसी का बच्चा अच्छा है आपको अपने बच्चों से ज्यादा लग रहा है, कहते अल्लाह मेरे बच्चे को भी हाफिज बना दे। किसी की शक्ल अच्छी लगी, अल्लाह मेरी भी अच्छी कर दे। चुपके चुपके अल्लाह से बातें कीजिए, दौरे कुरान के बाद सिर्फ अगर आपको अल्लाह से बातें करना आ गया तो बहुत खैर मिल जाएगी इंशाल्लाह। फिर इसी तरह लोगों के दरमियान अदल से फैसला करना, अल्लाह ताला की तरफ रजू सलामती की राह है, इसे इख्तियार करना है, और अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है।